Welcome to First Post Masterclass, a brand new podcast series where elite athletes break down their craft for you. My name is Amit Kamath, and joining me in this episode is Neeraj Chopra, one of India's finest track and field athletes. Neeraj is a gold medalist at the 2018 Commonwealth Games and the 2018 Asian Games. Today, he is going to talk about the science of javelin throwing. On the face of it, javelin throw seems like a simple enough discipline. Much like a fast bowler in cricket, you come streaming down and hurl an object with your entire might. In this interview, Neeraj breaks down the seemingly simple discipline and tells us why javelin throwing isn't just about how much strength there is in a thrower's arm. Neeraj, agar javelin ka uchchastariye competitors ko dekha jaye, to मेरे ख्याल से केशॉन वॉलकॉट है त्रिनिदाद टोबैगो के, फिर चेंग है चाइनीज टाइपे के, एंडरसन पीटर्स है ग्रेनाडा के, और यूलियस येगो और आप, इन पांचों के अलावा जितने भी कॉम्पिटिटर्स देखे जाते हैं टॉप लेवल के, वो सारे या तो यूरोपियंस है और फिर और जर्मन्स है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आप एक आउटसाइडर है, अंदर देख रहे हैं यूरोपियंस के एक स्पोर्ट की तरफ? ऐसा
मतलब स्पोर्ट तो देखो सभी के लिए होता ही है, लेकिन एक कई कंट्रियों में एक उस चीज का बड़ मतलब होता है, जैसे हमारे देश में क्रिकेट का लगा लो और यूएसए या जमैका में स्प्रिंटर्स का लगा लो, तो ये मतलब अलग अलग कंट्री का अलग अलग स्पोर्ट में होता है कि उसमें मतलब नेचुरली चलते हैं वो। तो अपना ये है कि भाई इतना एथलेटिक्स में और जेल में इतना नहीं था, और इन कंट्री में भी शायद मतलब केनिया वगैरह में तो है रनिंग का, है लॉन्ग रनिंग का और इनका, लेकिन जेवलिन थ्रो निकलना बहुत ही बड़ी बात है। और इंडिया में भी ऐसा ही है कि हमारे पास क्रिकेटर वगैरह ऐसे स्पोर्ट बैडमिंटन के भी हैं, रेसलिंग बॉक्सिंग इनके अच्छे हैं, लेकिन एथलेटिक्स में मतलब कुछ कुछ खिलाड़ी रहे हैं जैसे पीटी उषा, अंजू भी, जॉर्ज मिल्खा सिंह, और मतलब कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जो ऐसे कुछ, और लेकिन जेवलिन में तो यही है कि जेवलिन एक थोड़ा टेक्निकल इवेंट है और यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा इवेंट है, क्योंकि जब हमने शुरू किया, जब मैंने किया तो मुझे खुद नहीं पता था कि अच्छे से कि क्या चीज है, कैसे शुरू करना है। तो बिल्कुल शुरू में लगता था कि हाँ यार थोड़ा उनका ही, क्योंकि जितने हमको देखने के मिलते यूरोपियन थ्रोअर ही होते थे, बहुत ही कम होता था कि दूसरी कंट्री के थ्रोअर है वहाँ पे जेवलिन में, तो लगभग यूरोप के ही होते थे तो पहले होता था, लेकिन अभी फील होने लगा कि यार हाँ इंडिया में भी है इस चीज का टैलेंट, जेवलिन का टैलेंट है और कर सकते हैं हम भी अच्छा।
ठीक है, मैं खुद जर्मनी गया था पिछले साल, तब मैंने थॉमस रोलर और एंड्रियास हॉफमैन के साथ इंटरव्यूज किए थे, तो उनको मैंने पूछा था कि ये जर्मनी का सीक्रेट क्या है, क्योंकि आप जर्मनी से देखेंगे तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 3 थ्रोअर्स है जो 90 पार कर चुके हैं और 2-3 थ्रोअर्स है जो ऑलमोस्ट 85-88 के बीच में है, तो
पुराने भी रहे हैं जर्मनी में, पहले भी रहे हैं हाँ, जो 90 पार कर चुके हैं।
बराबर, आपके आपके कोच जो थे उवे हॉर्न, वो खुद जर्मन है।
हाँ, वो भी है, रेमंड एक नाम के थे, एक बोरिस एंड्री है जो जिन्होंने जो वेटर को कोचिंग दे रहे हैं
हाँ।
तो पुराने जेवलिन थ्रोअर भी काफी मतलब बढ़िया रहे हैं वहाँ के, मेल और फीमेल दोनों ही
हाँ। तो मैं जब भी उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि जर्मनी का जो सीक्रेट है जैवलिन थ्रोइंग में वो क्या है,
हाँ जी,
तो कभी सीधे जवाब नहीं दिया उन्होंने, कभी आपने कभी जानने की कोशिश की और आपको कभी शायद जवाब मिला हो?
देखो जी, एक शुरू से एक इंटरेस्ट होता है, एक वो बचपन से इस चीज में आ जाते हैं मतलब एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करते हैं, और ये ऐसे स्पोर्ट्स में मतलब वो बचपन से 11-12 साल के होते तब से जेवलिन में इनमें इंटरेस्ट होने लगता है उनका, तो उसका काफी फायदा रहता है, और मतलब उनके पास काफी ये भी है देखने के लिए, काफी मोटिवेशनल पहले से एथलीट रह चुके हैं उनके काफी अच्छे, जिनसे उनको इंस्पिरेशन मिलती है, तो ऐसी चीजों का बहुत फर्क होता है जी, क्योंकि जब हमारे पास देखने के लिए इंस्पिरेशन हो और सीखने के लिए बहुत कुछ हो
हाँ।
क्योंकि उनके पास कोचिज वगैरह हैं सीखने के लिए, और वो जो पहले इतने अच्छे स्पोर्ट इतने अच्छे लेवल पे स्पोर्ट कर चुके हैं, वो फिर उसके बाद में वो उनको सिखाते हैं, तो ये चीजें काफी वो मायने रखती हैं जी, कि नई नई चीजें वो इसमें यूज में लेके आते हैं, और शुरू से ही काफी पुराना उनका जर्मनी का और यूरोप का काफी पुराना रहा है, जैसे फिनलैंड है, ये शुरू से इन कंट्रीज में मतलब जेवलिन का बहुत ज्यादा हो रहा है नाम इनका, क्योंकि भी ओलंपिक स्ट्रीम उठा के देखेंगे तो इनका शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। तो जिसका पहले से इतना मतलब वो तो उनको फिर फायदा मिल ही जाता है जिस चीज का।
बराबर।
तो कहीं ना कहीं वही चीज है, शायद अभी हम शुरू कर रहे हैं, अभी हम धीरे धीरे हम भी बढ़ रहे हैं, इंडिया भी बढ़ रहा है, और आने वाले सालों में फिर वही है कि जो हमारे सीनियर हैं जो अच्छे लेवल पे सपोर्ट करके फिर वो छोड़ेंगे, अगर वो भी इस चीज में फिर रहते हैं, वो भी हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ, तो जो नए बच्चे करते हैं शुरू उनके लिए काफी फायदा रहेगा, वो अच्छे से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा गेम है जी, ऐसा इवेंट है जिसको हम स्टार्टिंग से हम टेक्निक को जैसे उसमें अपने आप को मोड़ेंगे वैसा ही होगा, फिर उसके बाद में ज्यादा चेंज ही नहीं किया जाते।
बराबर।
उसके बाद में फिर वही, हाँ, तो टेक्निकल स्पोर्ट अगर आप शुरू से ही अच्छा करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी टेक्निक करेंगे और स्टार्टिंग से ही अपना बेस अच्छा करके चलेंगे तो आगे के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अभी अपने यहाँ पे क्या होता है कि अच्छे से गाइडेंस नहीं मिलती।
बराबर।
क्योंकि जो बच्चा शुरू करता है वो उसको शुरू में वो स्ट्रेंथ का वो हो जाता है कि स्ट्रेंथ बना लूं अपने अंदर और बहुत जल्दी मैं एक टारगेट अचीव कर लूं, वो चीज काफी अपने आप पे नुकसान कर जाती है, क्योंकि ये ऐसे स्पोर्ट है जी, फिजिकली स्पोर्ट, इनमें धीरे धीरे करके परफॉर्मेंस आती है, आपको मतलब पेशेंस रखना पड़ता है काफी ज्यादा।
बराबर।
कहीं ना कहीं वही है कि उनको इस चीज का फायदा है कि उनको सिखाने वाले उनको बताने वाले शुरू से ही होते हैं और उनके वहाँ पे इस चीज का है मतलब जेवलिन के लिए और एथलेटिक्स के लिए पहले से ही एक अच्छा माहौल है वहाँ का। जिस कंट्री में ऐसे होता है तो उसका फायदा इस चीज से मिलता ही है।
हाँ। नीरज, आपने बोला कि ये जो अपने यहाँ पे जब सीखते हैं शुरुआत में तो ये सोचा जाता है कि ये स्ट्रेंथ का स्पोर्ट है, आपका शोल्डर जितना स्ट्रांग होगा आप उतना ही दूर फेंकेंगे, पर स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या महत्व है स्पोर्ट में, उस बारे में थोड़ा बताएंगे?
देखो जी, देखो देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ सिर्फ हाथ से थ्रो कर रहे हैं, है ना।
हाँ।
क्योंकि हम मैं खुद सोचता हूँ कि जब मैंने शुरू किया था, कोई भी शुरू करता है या कोई देखता है तो ऐसा ही लगता है कि सिर्फ भागना और हाथ से थ्रो करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। थ्रोअर का बोलते हैं कि लेग्स का अपर बॉडी से ज्यादा यूज होता है, मतलब हमारी लेग्स ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए अपर बॉडी से। अपर बॉडी का यूज है हमको मतलब हर एक चीज की जरूरत है, हम भागते हैं हमारे एंकल स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि आगे जब ब्लॉक होता है तो एंकल पे बहुत ज्यादा लोड आता है। हमारे नी स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि ब्लॉक करते हैं पूरे बॉडी का, तो मतलब हम पूरी स्पीड में भाग के आते हैं, अपना पूरा एकदम जैसे ब्रेक लगता है वैसे हमको ब्लॉकिंग लेग पे इतना पूरा वेट आता है। तो हमारे ग्लूट्स मसल, नी और एंकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद क्या आता है, वो ब्लॉक लगती है एकदम, जो जर्ग लगती है वो बैक में और शोल्डर पे जो आता है बैक, क्योंकि हम कोई चीज ठोक दिया जैसे अभी हम इस चीज से जंप लेते हैं तो एकदम पूरी बॉडी में करंट आता है ना, तो वैसा ही उस टाइम कुछ होता है, वो ब्लॉक लगाते हैं ना तो हर एक मसल हर एक जॉइंट का उसमें यूज होता है, तो वो चीजें अभी समझ में आती है जब हम कर रहे हैं, लेकिन अब जब शुरू में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम भाग के सिर्फ हाथ से थ्रो कर रहे हैं, सिर्फ हम शोल्डर का यूज होता है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर तक हर एक मसल का यूज हो ही जाता है। और रही बात जी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी की, बहुत ही जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी, तो एक जेवलिन थ्रोअर के लिए सबसे जरूरी चीज है फ्लेक्सिबल होना, उसके साथ साथ फिर स्पीड, और स्पीड को आपको मतलब स्पीड होना ही काफी नहीं है, स्पीड आपको कंट्रोल में करनी आनी चाहिए कि हम अपने रनवे पे उस स्पीड को कैसे यूज कर सकते हैं, कि कई बार हम स्पीड तो कर देते हैं रनवे पे, मतलब हम जेवलिन फेंकने जाते हैं तो पूरी स्पीड से भाग लेते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो कंट्रोल करने के लिए हमको अपने कोर स्ट्रेंथ और बाकी की शोल्डर स्ट्रेंथ और लेग्स की स्ट्रेंथ उन चीजों को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो बिल्कुल जी, काफी चीजें हैं, मतलब दिखने में थोड़ा सा लगता है कुछ की इन्हीं चीजों का काम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके हमको स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन हर चीज का एक मतलब सभी चीजें इकट्ठी करके एक मतलब एथलीट तैयार होता है।
और नीरज, आपने टेक्निक के बारे में भी बोला कि एक बार आप एक सर्टन एज पे पहुंच जाए उसके बाद टेक्निक बदलना या फिर चेंजेस लाना काफी मुश्किल हो जाता है, उस बारे में?
छोटे मोटे चेंजेस ला सकते हैं लेकिन हम सोचते हैं कि हम किसी दूसरे जेवलिन थ्रोअर की तरह अपनी टेक्निक कर ले तो वो काफी गलत हो जाता है, फिर वो हमको भी इंजरी कर सकती है और क्या पता परफॉर्मेंस में भी हमारे इफेक्ट पड़ सकता है अगर हम दूसरे किसी की, ये स्पोर्ट्स एक नेचुरल मतलब एक नेचुरल वे होता है, अगर हम कुछ चीज फेंक रहे हैं
तो इंसान फेंकता है नेचुरल, जैसे फेंकता है जहां से उसको अच्छा लगता है उधर से ही बॉडी उसको नेचुरल थ्रो करती है। और कई चीजें कई कई लोग जैसे थ्रो करते हैं वो थ्रो करके गिरते हैं है ना, और कोई उसको बनावटी करने की कोशिश करे तो वो नेचुरल नहीं रहता है। उसमें क्या है कि आप उसके करने के चक्कर में अपना नेचुरल जो होता है वो भी छोड़ देते हैं। तो वही है जी, जो आप हमारे अंदर जो नेचुरल है वो करो, उसके बाद जो आपको उसमें कमी लगे अपनी टेक्निक में, मतलब कोच को जो कमी लगे तो उसके ऊपर फिर काम कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं उसमें कोच को लग रहा है कि नहीं ये मतलब पूरा गलत है, हमको महसूस हो रहा है कि नहीं ये टेक्निक ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी दूसरे जेवलिन थ्रोअर की जैसी होनी चाहिए, और हम कोशिश करें कि बिल्कुल पूरी टेक्निक उसकी तरह चेंज कर दें, तो वो थोड़ा सा गलत होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से जो आपकी टेक्निक है ना उस पर अपने अपनी खुद की टेक्निक के ऊपर स्ट्रॉन्ग होके चलो, क्योंकि फेंकते हुए सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल पॉइंट पे देखें मतलब अटैक उनका देखें तो सबकी कुछ ना कुछ उनकी अलग चीज होती है। और टेक्निक के मामले में सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग जेंजलेजनी है, जो जिनकी टेक्निक सबसे अच्छी मानी जाती है वर्ल्ड में, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वो काफी स्ट्रॉन्ग है टेक्निक के मामले में, काफी अच्छी टेक्निक है उनकी।
अच्छा नीरज, आपने कहा कि आप अगर लोगों को फेंकते हुए देखे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे कि मैग्नस कर्ट को जब देखते हैं तो पूरा ही अपने आप को फेंक देते हैं, कई बार इंजर भी हो जाते हैं वो। आपको भी एक दो बार जब मैंने फेंकते हुए देखा है तो आप भी अपने आप को फ्लोर पे फेंक देते हैं, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है या फिर वो आप रिड्यूस करने को ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि
ये सिर्फ ये नेचुरल चीज है, इसमें हम कुछ भी हमारा बनावटी नहीं है।
अच्छा,
वो गिरता है, सभी वर्ल्ड के सभी जेवलिन थ्रोअर नहीं गिरते हैं, कुछ ही हैं जो थ्रो मारने के बाद जमीन पे गिर जाते हैं। तो नेचुरल चीज है वो, मतलब बनाई नहीं जाती कि हमने वो चीज बनाई है। मैंने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं कि मैं ऐसा ट्राई करूं कि मैं थ्रो करने के बाद गिर जाऊं आगे। और मैं ग्राउंड पे मैं बिल्कुल ही नॉर्मल थ्रो करता हूं, लेकिन जब कंपटीशन में मैं होता हूं अपना पूरा 100% देता हूं, तो या तो ओवर स्पीड लगा लो या फिर वो उस टाइम ऐसा कुछ बॉडी के अंदर होता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा जुनून जोश लगा लो उस टाइम पे होता है कि मैं गिर जाता हूं, तो वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाता मैं। ग्राउंड पे मैं अच्छे से अपना टेक्निक कर लेता हूं और थ्रो भी अच्छे से कर लेता हूं, लेकिन वहां पे वो नेचुरल चीज है, वो अपने आप ही पड़ जाता हूं मैं।
अच्छा नीरज, आपने जोश की बात की तो कई बार आपको देखा है थ्रो करने के बाद एक बार आप रिलीज हो गया उसके बाद आप चिल्लाते हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि टेनिस में जब हम देखते हैं तो समझ में आते हैं कि वो लोग क्यों चिल्ला रहे, ताकि ओपोनेंट का रिदम बिगड़ जाए, पर जैवलिन थ्रोअर्स क्यों चिल्लाते हैं?
वो बता रहा था कि मतलब हमको क्या होता है कि हमको एक मतलब हमारा स्पोर्ट ऐसा है कि हमको एक ही बार में अपना 100% देना होता है। ये नहीं है कि हम थोड़ा पहले धीरे कर लें फिर उसके बाद, अभी कैसे किस स्पोर्ट का आपका एग्जांपल दूं, मान लो टेनिस है या बैडमिंटन है, हम पूरी जोर से तो नहीं मारते ना हर एक शॉट। हम टेक्निकल मारते हैं कि एक थोड़ा आराम से गिर गया, एक पूरी जोर से मार दिया या एक थोड़ा सा अपना मतलब। तो सभी स्पोर्ट्स का अलग अलग सिस्टम होता है, तो हमारा वही है कि हमको अपना 100% देना होता है, तो इसलिए मतलब वो अपने आप ही नेचुरल वो चीज आ जाती है।
अच्छा
हम उस चीज को मतलब हाँ, कई कई थ्रोअर होते हैं कि शांत उससे खेलते हैं, शांत होके कंपटीशन करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा कोई ऐसे
अग्रेशन
चिल्लाते नहीं है या ऐसा कुछ, हाँ मतलब ऐसा करते नहीं है। लेकिन कई की आदत होती है कि मतलब आप देखोगे ज्यादातर वही मतलब बाद में चिल्लाते हैं ऐसा कुछ, वो या तो उसकी खुद की पावर लग जाती है या फिर होता है नेचुरल है ये चीज भी।
अच्छा नीरज, आपने बोला कि आपका जो स्पोर्ट है वो काफ़ी अलग है, तो एक चीज़ जाननी थी कि आपका पहला थ्रो और दूसरे थ्रो या फिर आपके जो 6 थ्रोज होते हैं फाइनल्स में, हर थ्रो के बीच में आप एक अकेले बैठे रहते, एक बड़े से स्टेडियम में हो, बहुत सारा क्राउड हो, आपके कोच हो स्टैंड्स में कहीं पे, पर एक एथलीट जो रहता है वो अकेला होता है, तो क्या चीज़ें दिमाग में चलती है एक जैवलिन थ्रोअर के दो थ्रो के बीच में?
देखो जी, वही है कि अभी इंडिविजुअल स्पोर्ट है तो अपने आप को मतलब हाँ एक टीम में तो काम करते हैं, लेकिन है अकेले का स्पोर्ट, हमको खुद को एथलीट को प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर एथलीट के मन में कुछ नहीं है तो फिर कोच या फिर उसकी टीम कुछ नहीं कर सकती। तो एथलीट के ऊपर भी मतलब काफी अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और अपनी जो ट्रेनिंग की है उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो उस टाइम हम ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, बस यही है कि अपना कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं कि आज मैंने इतने मीटर थ्रो मार के जानी है या फिर नेक्स्ट थ्रो में इतना मीटर थ्रो मारना है। तो मतलब कोई वहाँ पे भी हमारे दिमाग में अगर हम वही है कि हमारा बॉडी अच्छी रिस्पॉन्स कर रही है तो हम अपने आप को वार्म अप रखते हैं बस और शांत रह बैठे रहते हैं जब तक हमारा अटैम्प्ट आता है। हाँ, बीच में कोई अच्छी थ्रो कर जाता है या फिर कॉम्पिटिशन थोड़ा ऊपर उठता है, कोई और अच्छी थ्रो मारता है, तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करती रहती है बॉडी हमारे अंदर, फिर और ज्यादा जोश आ जाता है कि हमको भी और अच्छी लगानी है। तो वो कॉम्पिटिशन पर डिपेंड करता है कैसा चल रहा है। कई बार बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन चल जाता है तो वो हमारे खुद के अंदर खुद से ही हम इंस्पायर होने लगते हैं कि हाँ यार अभी आप मुझको भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उधर के माहौल के ऊपर है और दिमाग में बस यही चलता है कि अपने आप को वार्म अप रखे और अगले थ्रो में ऐसे थ्रो करना है। कई बार कैसा होता है कि हमको खुद को फील हो जाता है कि यार अभी जेवलिन ऐसे थ्रो नहीं हुआ जैसे मैं करना चाहता था या मेरी 100% में लगा नहीं पाया। तो उसके लिए थोड़ा सा काम रहना पड़ता है, अपने आप को फिर फोकस करना पड़ता है। फोकस जरूरी है बहुत ज्यादा। हाँ जी
नीरज, आपने बोला कि आप ज़्यादा सोचते नहीं है दो थ्रोस के बीच में, पर कंपटीशन के बीच में, दो कंपटीशन के बीच में या अभी भी आप ये माइलस्टोन्स के बारे में सोचते हैं? क्योंकि आपके स्पोर्ट में 90 मीटर जो है वो एक बहुत सिलेक्ट क्लब है थ्रोअर्स का। 100 मीटर तो किसी ने अभी, जब से 800 ग्राम का जैवलिन बना है तब से किसी ने नहीं किया। यान जेलेज़नी जैसे आपने बोला 98.48 पे है। आप 90 मीटर्स फेंकने के बारे में सोचते हैं या उस पर फोकस्ड है?
देखो जी, मैं मतलब कभी डिस्टेंस का वो नहीं लेके जाता, क्योंकि देखो मैंने आज तक मैं कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहा हूँ या डायमंड लीग या फिर एशियन गेम्स खेला था, तो मैं कभी भी मतलब ऐसा कोई डिस्टेंस लेके नहीं गया कि मुझे आज इतने मीटर थ्रो कर जाना है। मैं बस अपना कोशिश करता हूँ कि अपना 100% दे के आऊँ। थ्रो अपने आप ही लग जाते हैं जितनी लगनी होती है। हाँ, हम ग्राउंड पे ट्रेनिंग में सोच सकते हैं, मतलब ये सोच के कि हम इस बार मुझे 90 मीटर थ्रो करनी है या फिर 92 मीटर करनी है, लेकिन उधर अगर हम कॉम्पिटिशन के बीच में ये चीज करने लगे कि यार क्या पता अभी मेरा फर्स्ट थ्रो इतना अच्छा ना हो, 82 मीटर लगे या 80 मीटर लगे, और फिर मैं सोचूं कि नहीं आज 90 मीटर मार के जाना है मुझे, और वो बॉडी वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान दे देता है। क्या पता मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने के चक्कर में अपनी टेक्निक को भूल जाऊं या फिर उस अपनी टेक्निक को ना अपना पाऊं उसमें, तो वो उसका नुकसान भी है कहीं ना कहीं। तो बस अपना फोकस बना के रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपना 100% दूँ बस, और डिस्टेंस का कोई मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि इतने मीटर मुझे थ्रो करके जानी है आज। वो हो ही जाती है, वो अपने आप हो जाती है, क्योंकि हम अपना 100% देते ही हैं वहाँ पे। तो डिस्टेंस कवर हो ही जाता है जैसी ट्रेनिंग हमारी हो रखी है, और वो दिन के ऊपर डिपेंड है कि हमारी बॉडी जो कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, तो उतना वैसे ही थ्रो लग जाता है।
अच्छा,
सभी थ्रोअर का अलग अलग होता है। क्या पता कोई कुछ डिस्टेंस तो अपने दिमाग में सोच के आया हो कितने मीटर मुझे आज मार के जानी है, लेकिन मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कभी।
अच्छा नीरज, आपको आपके इंस्टाग्राम वीडियोस ट्रेनिंग के जब देखते हैं तो काफ़ी यूनिक वीडियोस होते हैं। एक में आप जिम बॉल के ऊपर खड़े होके एक काफ़ी फ्लेक्सिबल सा स्टिक खिला रहे हैं और साथ में आप स्क्वाट्स भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, या फिर स्लैक लाइनिंग का भी आपको शौक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, किन किन चीज़ों पे वर्क करने के लिए?
ये चीज़ें जब भी आने लगी हैं नई नई चीज़ें, मतलब मैं वैसे इन चीज़ों को ट्रेनिंग उसमें नहीं लेता, मैं इन चीज़ों को बस एक फन टाइप में लेता हूँ। मतलब स्लैक लाइन है या फिर वो फ्लैक्स बार है हिलाने के लिए, वो मैं ट्रेनिंग के उसमें नहीं गिनता, क्योंकि ये ट्रेनिंग है ही नहीं है, तो बस एक फन है, एक कंट्रोल अपना बॉडी बैलेंसिंग के लिए कुछ एक्सरसाइज है छोटी मोटी। तो ये चीजें अभी आने लगी हैं नई नई, ये अच्छी चीजें भी हैं, बॉडी का कोऑर्डिनेशन बैलेंस बना रहता है, तो ये करते हैं अच्छा रहता है थोड़ा थोड़ा। मतलब ट्रेनिंग के बीच में हम कुछ नई चीज करते हैं और बैलेंसिंग वगैरह कुछ हम नई चीज ट्राई कर रहे हैं, तो हमारा मन भी थोड़ा बना रहता है कि हाँ कुछ नया कर रहे हैं, है ना, मजा आता है ट्रेनिंग करने में। अगर हम वही सब कुछ वही प्लान करते जाए, पुराना वही उसी पे लगे रहे, तो थोड़ा बोर हो जाते हैं ना कि हाँ यार कुछ नया हो जाता है, लाइफ में अच्छा लगता है, तो ये वो चीजें हैं।
अच्छा,
और उनका फायदा भी है, बैलेंस बनता है बॉडी का, और वो फ्लेक्स बार को हम मिलाते हैं तो जो शोल्डर की छोटी छोटी मसल होती है वो उनके ऊपर वो असर डालता है, शायद वो मतलब उनको स्ट्रॉन्ग करता है मसल्स को, तो हमको वो हिलाना होता है, लेकिन अपना शोल्डर स्टेबल रखने की कोशिश करनी होती है, तो जो शोल्डर की मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, उससे छोटी 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 मसल होती हैं तो।
अच्छा अच्छा नीरज, आपने कुछ वक्त पहले ब्लॉक के बारे में बोला कि आप जब ब्लॉक करते हैं तो एंकल्स पे काफ़ी स्ट्रेस आता है, ये ब्लॉक थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ब्लॉक क्या होता है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है जैवलिन थ्रोइंग के लिए?
ब्लॉक जी देखो एक सिंपल सी बात है, इसलिए इतना जरूरी है अभी क्योंकि हम अभी कोई भी चीज लगा लो, या बाइक लगा लो या साइकिल लगा लो, मतलब हमको एकदम कोई चीज रोकनी है, मतलब हमको रुकना भी है ना, हमको थ्रो करके भागना ही नहीं है, हमको थ्रो करने के बाद लाइन से पहले रुकना है और थ्रो भी करनी है, तो ब्लॉक का बहुत ही ज्यादा एक मैटर करता है, और ब्लॉक जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा आप उतना ही अपना 100% थ्रो में दे सकते हैं। अगर आपका ब्लॉक लेग वीक हुआ, मतलब आपका आपने ऐसे ब्लॉक मारा और वो एकदम पैर आपका मुड़ गया, या फिर आपका बॉडी वेट है जो पूरा आपके लेग के ऊपर से निकल गया, तो फिर वो पूरा काम नहीं कर पाएगा अगला ब्लॉक। अगर आपके लेफ्ट लेग में स्ट्रेंथ और आप ब्लॉक मारते हैं तो एकदम जो पीछे से जो थ्रो आर्म है वो बहुत फास्ट आएगा आगे, आप थ्रो करोगे फिर उसके बाद जो ब्लॉक का जो काम है वो कंट्रोल करवाना है बॉडी को, कि आपने आपकी पूरी स्पीड को स्लो कर देता है ब्लॉक, मतलब कहने की बात यह है कि आप थ्रो भी अच्छे से कर पाओगे और पूरी बॉडी, जैसे वही मैंने बताया अभी बाइक का इंच जो एग्जांपल दिया, अभी बाइक में आप ब्रेक लगाओगे अगला मतलब एकदम टायर रुकेंगे और आप मतलब वो एक डिस्टेंस से पहले रुक जाएगी है ना, तो ब्लॉक का वो ऐसा ही कुछ काम है कि आपको थ्रो करने के बाद अपने आप अपनी बॉडी को कंट्रोल भी करना है, तो ब्लॉक उस चीज में हेल्प करता है।
अच्छा,
एकदम बॉडी को उस लाइन से पहले रोक देता है। हाँ जी
ठीक है। और नीरज, एक आपका थ्रोइंग का वीडियो जो था मैंने देखा था, जिसमें आप जैसे ही ब्लॉक करते हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ भी जाते हैं जब अपना बॉडी ओपन करते हैं थ्रो रिलीज के लिए।
हाँ जी।
वो सारे जैवलिन थ्रोअर्स हाँ का हाँ होता है, और उसका क्या महत्व होता है?
लेफ्ट की तरफ मैं मतलब जब मैं ब्लॉकिंग लेग लेफ्ट की तरफ बोल रहे हो या फिर मैं जंप लेके लेफ्ट की तरफ जाता
हूं? हां, जंप लेके आप लेफ्ट की तरफ थोड़ा जाते हैं ना।
हां जंप लेके। हां जी, कईयों का होता है कि वो सीधे चले जाते हैं, मतलब
बराबर
उनकी बॉडी सीधे रहते हैं।
हाँ।
मेरा थोड़ा सा वो मेरा थोड़ा लेफ्ट की तरफ आता है, वो मतलब ठीक है, उसका इतना नुकसान नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है अगर हम ज्यादा लेफ्ट आ जाते हैं ना, तो फिर हमारी बॉडी जो है वो जल्दी खुल जाती है थ्रो के लिए, बहुत जल्दी हम क्विकली ट्राई कर दे रहे हैं, फिर उसमें अपना 100% लगा पाते हैं। जैसे अभी मैं लेफ्ट आ गया और मेरा जो थ्रोइंग आर्म है वो जल्दी जल्दी आगे आ जाएगा, मतलब थ्रो मारने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि वो मैं अपना जो ब्लॉक का यूज भी नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, क्योंकि वो जो मेरा थ्रोइंग आर्म है वो जल्दी पीछे से निकल के आ जाएगा, तो फिर वो कुछ ना कुछ या तो उसमें रिलीज में गड़बड़ हो जाएगी या फिर ब्लॉकिंग लैग मेरा अच्छे से काम नहीं करेगा, तो वो मतलब उसमें बैलेंस रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड आता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर मैं आ रहा हूँ और फिर मेरा ब्लॉकिंग लैग भी बहुत लेफ्ट में जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं उस चीज का गड़बड़ हो सकती है रिलीज में, चैलेंज की रिलीज में।
बराबर।
वही है जी, वो भी एक नेचुरल सी चीज है, उसको हम सुधार सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो वही रहता है कि थोड़ा बहुत लेफ्ट में चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लेफ्ट भी ठीक नहीं है। और सभी थ्रोस का अलग होता है, इसमें कई है जो सीधे चले जाते हैं, कई होगा थोड़ा लेफ्ट आ जाता है। हाँ जी।
और नीरज, एक कंपटीशन के दिन में क्या कंडीशंस मैटर करते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा हाई ऑल्टीट्यूड वेन्यू हो तो उससे ज्यादा डिस्टेंस आता है, ऐसा कुछ होता है जैवलिन थ्रोइंग में?
ऐसा तो जी देखो पता नहीं होता होगा, पर ऐसा मतलब मैंने इस चीज के बारे में कभी वो इस चीज पे गौर नहीं किया है कभी भी, और ना मैंने कभी ऐसा कोशिश किया कि अभी आज ये ऐसा वेदर है और आज हवा उधर से चल रही है तो मैं दूसरी जैवलिन ट्राई कर लूं, अभी तक तो मतलब मैंने इस चीज के बारे में ज्यादा काम नहीं किया, मैं वही जो मुझे लगता है पसंद होती है जैवलिन वही उठाता हूँ। हाँ, कई बार गर्मी होती है, सर्दी होती है, उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है, उसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है वेदर में कि भाई अभी ठंड है तो अपना पूरा अच्छे से वो रूप कैसे रहना है और क्या क्या कपड़े डालने हैं, या फिर गर्मी में कैसे वो रहना है और कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखना है, वो चीजें होती हैं। लेकिन हवा का कुछ ना कुछ है, होता है उसका हवा का भी, लेकिन मैंने इन चीजों पर काम नहीं किया अभी कि उधर से अगर पीछे से हवा चल रही है तो कौन सी जल फेंकनी है और किस एंगल में फेंकनी है और आगे चल रही है तो कैसे, ये मतलब काफी टेक्निकल होता है। मैंने इन चीजों के बारे में ज्यादा अभी तक पढ़ा भी नहीं है और मैं मतलब इस बारे में ज्यादा बात भी नहीं की अभी।
अच्छा,
नीरज, काफी चीजें होती हैं। हाँ जी, ये करता है, ये कई चीजें मैटर करती हैं।
नीरज, थोड़े आखिरी सवाल, मुझे जानना था कि आप जब थ्रो करते हैं एक कंपटीशन में, तो कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आप एम करते हैं स्टेडियम में?
बस हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो लेफ्ट आर्म होता है ना, शोल्डर, उसके आगे बिल्कुल सीधा सामने देखते हैं। हाँ जी, लेफ्ट आर्म के ऊपर से हम नजर रखते हैं, मतलब आगे टारगेट पे सीधा ऊपर, मतलब वहां पे मारना नहीं होता, बस हमको अपनी जो नेक है, हमारी गर्दन है, उसको कंट्रोल में रखना होता है।
अच्छा,
ताकि नजर, मतलब अगर हम, कई बार ये होता है ना कि हम टारगेट की तरफ, क्या पता हम लेफ्ट राइट या लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं, क्या पता उधर ही थ्रो कर दें, तो हमारा ज्यादातर नजरें आगे सामने रहती हैं, अगले लेफ्ट आर्म के ऊपर से।
अच्छा,
तो उसमें कुछ भी है, चाहे आगे कोई ऊंचा सा पेड़ है या फिर वहाँ पे कोई टावर है या स्टेडियम की छत है, तो वहाँ पे नजर रहती है। अगर कुछ भी नहीं है तो हम ऐसे ही, वो भी एक नेचुरल हमारा मूवमेंट है, उस पर भी हम लेफ्ट आर्म के ऊपर से देखते हैं, मतलब ऐसा किसी चीज को नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ हमारी नजर ऊपर ही रहती है सामने टारगेट में।
अच्छा, और नीरज, बाकी सारे स्पोर्ट्स में वीडियो एनालिसिस जो होता है वो काफी किया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर समझने के लिए कि क्या चीज़ें बदली जाए, जैवलिन थ्रोइंग में आप वीडियो एनालिसिस करते
हैं? हाँ, जैवलिन में बहुत ज़्यादा होता है, टेक्निकल स्पोर्ट है तो काफ़ी ज़्यादा है, जर्मनी वाले और इनका स्पेशल हर साल ही कुछ ना कुछ लगता है एनालिस करने के लिए, लेकिन इंडिया में अभी ये चीज़ नहीं है, मतलब होता तो काफ़ी है लेकिन हमारे साथ अभी तक नहीं हुआ है।
अच्छा, और नीरज, एक आखिरी चीज पूछनी थी कि आपने कोई एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एशियन गेम्स के पहले आपने पूरा सोशल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया था बिकॉज आपको अपना फोकस गंवाना नहीं था, तो अभी जब आप ओलंपिक्स जाएंगे अगले साल, तो तभी भी वैसा ही करेंगे या सारे बड़े कॉम्पिटिशन्स आपसे जो जाएंगे वहाँ पे ये सोशल मीडिया ब्लैकआउट होगा आपका?
मतलब इस चीज़ का कोई ज़्यादा, इस चीज़ पे ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए कि यार हाँ अभी सोशल मीडिया, तो मतलब ये भी ठीक है, अपनी जगह कहीं ना कहीं आप अपडेट देते रहते हैं कि हाँ यार मेरा कल कॉम्पिटिशन है या कल मैं खेलने जा रहा हूँ, तो लोग आपको देखने के लिए मतलब तैयार होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। लेकिन मैं कहीं पर मानता हूँ कि कई बार ये होता है कि आप कोई नया आपके लिए एक्सपीरियंस है, मान लो मैं ओलंपिक्स खेलने जा रहा हूँ तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, तो लोग तो सब यही बोल रहे हैं कि सभी बातें करने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम हम बातें करें या कॉन्ग्रेचुलेशन दे, है ना, तो उस टाइम सभी को हम रिप्लाई भी नहीं कर पाते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार कम ही फोन यूज करो, क्योंकि अभी किसी का फोन आ रहा है, कोई बात करना चाह रहा है और बीच में उससे नहीं कर पाते हैं तो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि यार इवेंट होने के बाद ही करें किसी से बात और इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, सभी ये बोल रहे हैं कि गोल्ड लेके आना है, गोल्ड लेके आना है, तो वो चीज़ें फिर दिमाग में वही चीज़ घुस जाती है, फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आदमी फिर प्रेशर में आ सकता है मेरे हिसाब से।
अच्छा अच्छा,
अगर हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो।
और आपने ये प्रेशर की बात की, तो जब आप ओलंपिक्स में कम्पीट करेंगे अगले साल, तो आप मेरे ख्याल से आप चाहते हैं कि आपके फैमिली वाले ना आए, क्योंकि वो अभी तक आपके कोई बड़े कंपटीशन में आपको देखने नहीं आए।
जी जी,
तो तभी भी आप नहीं?
हाँ, मतलब फैमिली के बारे में मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है कि फैमिली वाले ना हो, क्योंकि उसके उस टाइम पे कुछ एक अलग ही टाइप का, मतलब एथलीट कुछ अलग ही टाइप का इंसान होता है वो, उसके अंदर मतलब अभी मैं घर पे जाता हूँ, थोड़ी एक घर की भावना अजीब सी तरह की होती है घर वालों के साथ, मैं एक अलग अलग मूड होता है।
अच्छा,
लेकिन कंपटीशन के बीच में एक अलग ही तरह का इंसान होता है, मतलब घर वाले दिख जाए तो शायद कहीं ना कहीं मैं मतलब चिल रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन कंपटीशन में फिर बहुत ही ज्यादा एक जोश से का माहौल रहता है उसमें। और मुझे पता भी नहीं है, मतलब मैं घर वालों के सामने थोड़ा सा ऐसे थोड़ा ऐसे नर्वस टाइप का, क्या बोलते हैं उसे, नर्वस ही बोल सकते हैं, थोड़ा सा अजीब सा फील करते हैं, शर्माना जैसे,
कॉन्शियस
कि मैं चिल्लाऊंगा तो कैसा फील होगा, कैसा लगेगा उनको, मतलब थोड़ा सा एक नया सा चीज है वो भी मेरे लिए। तो मैंने अभी तक मैं कहीं लेके तो नहीं गया हूँ, लेकिन आगे क्या बता, धीरे धीरे करके ये भी चीज सुधर जाए।
अच्छा, तो ओलंपिक्स अगर जाएंगे तो चाहेंगे कि वो हो स्टैंड्स में या नहीं?
देखते हैं ओलंपिक, क्योंकि अगर अगले साल हो रहा है तो काफी जल्दी है।
अच्छा,
पहले मैं कोशिश करूंगा कि नेशनल्स वगैरह से स्टार्ट करूं।
अच्छा, ओके।
अभी क्या बता, मैं सीधा ओलंपिक में ट्राई करूं और वहां पे कुछ गलत इफेक्ट पड़ जाए तो थोड़ा गलत है ना, नेशनल वगैरह में चल जाएगा।
अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए नीरज
जी।
सो दैट वॉज नीरज चोपड़ा विद हिज इनसाइट्स ऑन द साइंस ऑफ जैवलिन थ्रोइंग। Hope you enjoyed listening to it, and don't forget to tune in for the next edition of First Post Masterclass. Until then, stay safe and goodbye.